इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ।
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। रचयिता बाप अपनी रचना का भेद स्वयं ही बताते हैं। और कैसे बताते हैं, एक कहानी के रूप में सारी रचना को बाबा ने एक कहानी के रूप में बताया है। पहले क्या थे, फिर क्या बने, अब आकर क्या बने हो, फिर क्या बनोगे। तो कल, आज और कल की ये कहानी बाबा हम बच्चों को बताते हैं। तो ये कहानी को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। कहानी में ये सब बातें आती है ना, इतिहास भी आता है तो भूगोल भी आता है, कौन से राजाएं महाराजाएं होकर गए और उस समय मौसम कैसा था, परिस्थितियां क्या थी, वो सब इतिहास और भूगोल उसमें आ जाता है। तो बाबा आकर के वो इतिहास और भूगोल बताते हैं सारे कल्प का। फिर बाबा क्या कहते हैं कि अभी जो पढ़ाया जाता है वो केवल वो अधूरा है, अधूरा ही बताया जाता है, केवल द्वापर युग से लेकर, वो सतयुग त्रेता का तो कोई वर्णन ही नहीं है। तो बाबा आकर के वो सतयुग त्रेता का भी वर्णन करते हैं। द्वापर में जब आते हैं तो पहले पहले क्या हो जाते हैं, बाबा कहते हैं धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। आत्मा अपने धर्म को भी भूल गई और अपने कर्म को भी भूल गई। तो पहले क्या भ्रष्ट होते हैं, पहले धर्म भ्रष्ट होते हैं या पहले कर्म भ्रष्ट होते हैं, पहले कौन सी बात भ्रष्ट होती है, धर्म या कर्म? जी धर्म। धर्म पहले भ्रष्ट होता है, आत्मा खुद को भूल गई और देह के धर्म में आ गई तो कर्म भी भ्रष्ट हो गए। तो धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट होने के बाद फिर कैसे ये दुनिया पतित बनती गई। और अभी बाबा आकर के सबसे पहले धर्म का ज्ञान देते हैं, कौन सा धर्म, कि हे आत्मा तुम्हारा स्वधर्म शांति है, हे आत्मा तुम्हारा असली धर्म देवी देवता है, तुम भूल गए हो। तो आज बाबा ने वो रचना का भेद एक कहानी के रूप में बताया है। कई बार बाबा उस रूप में बताते हैं, लेकिन आज धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट उसको एम्फसिस दे करके बाबा ने आज की कहानी बताई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 16/4/2026 है। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ, योग बल बढ़ाओ, क्योंकि योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी और बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। यही हम चाहते हैं ना कि खाद निकल जाए, बाबा से पूरा वर्षा ले, तो उसके लिए योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? देवताओं के कर्म तो बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन अभी वही देवी देवताएं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गई है, तो सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। सबसे बड़ा कारण कर्म भ्रष्ट का है कि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं और साथ साथ पहले तो सब धर्म की पहचान देते हैं, फिर साथ साथ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है, जो बाबा ने हमें सुनाया वो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय भी सबको देना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनानी है और सत्य परिचय भी बाप का देना है। तो धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, उसका गीत कौन सा होगा? कौन सा गीत है? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य है तुम्हारे जीवन में। तो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। अब ये किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ये किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। पहले तो बच्चे समझे कि हम पावन थे, पतित बने हैं, अभी फिर पावन बनना है, तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। बच्चे जान गए हैं कि हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वो अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो, और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, है ना गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, क्या पूछो, कि कहां तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहां पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, तब तुम क्या थे? सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब तुम पहले पहले देवी देवता कहलाते थे, जिसको ही कौन सा धर्म कहा जाता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहलाते हैं। अब हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, वो तो सिंधु घाटी पर सारे रहते थे ना देवताएं, वो सारी सिंधु घाटी है, कितने उसके इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, जहाँ कितना धन था, इतनी नदियां थी, है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत धन था वहां। अब हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, सिंधु से हिंदू नाम पड़ा, इसलिए स्थान के नाम से धर्म आ गया। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, बाबा कहानी के रूप में शुरू करते हैं, सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। ऐसे नहीं केवल राजा रानी पवित्र थे, प्रजा भी पवित्र थी, सब पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं, कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था, वहां एक ही धर्म था, पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनास्टी थी, राजधानी थी, डिनास्टी, फिर उनके बाद सेकंड लक्ष्मी नारायण, थर्ड लक्ष्मी नारायण, ये डिनास्टी मानी जाती है राजाई, उनकी भी डिनास्टी थी, और भारत बहुत धनवान था, वो सतयुग था। फिर आए त्रेता में, सतयुग से त्रेता में आए, तब भी पूज्य देवी देवता क्षत्रिय कहलाते थे, वो लक्ष्मी नारायण का राज्य और वो सीताराम का राज्य, सतयुग त्रेता। वो भी डिनास्टी चली, त्रेता की भी डिनास्टी चली, जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड द फर्स्ट सेकेंड वो डिनास्टी चली, ऐसे ही चलता था। ऐसे भारत में भी ऐसे ही था, खाली वो इंग्लैंड में नहीं था। एडवर्ड द फर्स्ट, किंग जॉर्ज द फर्स्ट, सेकेंड एडवर्ड, ये बहुत राजाओं के नाम थे, तो 1, 2, 3। बाबा कहते भारत में भी ऐसे ही था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हाँ, ले जाओ अपनी बुद्धि को 5000 वर्ष पहले के इतिहास में। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया। क्यों चंद्रवंशी में आया, क्यों सूर्यवंशी नहीं रहा? क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी ही है, ये प्रकृति का नियम है। हर चीज सतो से रजो, रजो से तमो होती ही है, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचयिता है बाप, तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचयिता ठहरा। वो रचयिता है तो कोई पुरानी दुनिया थोड़ी बनाएगा, जरूर वो सतयुगी नई दुनिया का रचयिता ठहरा। तो बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ले जाओ बुद्धि को, 5000 वर्ष पहले हम स्वर्ग में थे, ये भारत स्वर्ग था, फिर तुम नरक में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानती ही नहीं, वो तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी को तो कोई जानते ही नहीं है। ऋषि मुनि भी कहते गए, द्वापर युग में ऋषि मुनि आए, पर ऋषि मुनि भी क्या कहते गए, नेति नेति, हम न ईश्वर को जानते न उसकी रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब जाने भी कोई कैसे, क्यों कोई भी जाने कैसे, क्यों कोई नहीं जानते? क्योंकि ये तो बाप ही बस समझाते हैं ना, वहां तो बाबा था ही नहीं तो समझाए कौन, इसीलिए तो बाप ही बैठ समझाते, इसीलिए कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसको ही दिव्य जन्म लेते हैं उसको क्या नाम देते हैं, शिव जयंती, जिसको जिसकी ही फिर शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर क्या चाहिए, तुरंत शिव जयंती के तुरंत बाद क्या चाहिए, क्या चाहिए, गीता जयंती। फिर तुरंत बाद चाहिए गीता जयंती, क्योंकि शिव बाबा आते ही गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि तुमको ऐसी दुनिया में जाना है। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई, और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, चलो शिव जयंती मनाते, कहेंगे शिव भारत में आया। अच्छा, आकर के क्या किया ये भी कोई नहीं जानते हैं। शिव ठहरा, हाँ, क्या है, कौन है शिव? शिव ठहरा सभी आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। उसको बाबा गपोड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि बात अगर छोटी होती है पर उसको इतना बड़ा चढ़ा के अगर बोलते हैं ना तो वो गपोड़ा हो जाता है। तो शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। तो बाप आकर राइट बात बताते हैं, बाप के सिवाय बाकी सब रचयिता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं। देखो कौन कह सकता है, ये स्वयं भगवान ही कह सकते हैं ना कि रचयिता रचना के लिए सब झूठ ही बोलते हैं। क्योंकि क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि माया का राज्य है, माया ही उनसे झूठ बुलवाती है, माया का राज्य है। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था। पारसपुरी में क्या क्या था? सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। तो बाप बैठ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, अर्थात बाप रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, इसको क्या कहेंगे, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज उसी को कहेंगे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी। भारतवासी ये नहीं जानते हैं कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए, इरिलीजियस अधर्मी बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी ड्रामा अनुसार होना है। कोई कहे क्यों भूल गए हैं, भाई ड्रामा अनुसार ये होना ही है, ये भी ड्रामा अनुसार होना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए, है ना, सबकी बुद्धि में ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गई है। ऊंच से ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी को हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये तीन तबके हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीन फ्लोर बाबा कहते हैं, ये तीन तबके हैं। अब गॉड इज वन, परमात्मा एक है, तो उनकी रचना भी एक है। ऐसे नहीं कोई दूसरी कोई दुनिया ही है जहां पर ये खेल कोई चलता है या कोई और खेल चलता है, नहीं, पर रचयिता एक है तो रचना भी एक है, खेल भी एक ही है, उनकी रचना भी एक है। जो चक्र फिरता रहता है, सतयुग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े, 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, कैसे लेते हैं 84 जन्म, तो हिसाब चाहिए ना। जो कोई भी नहीं जानते, न कोई शास्त्र भी है, जैसे बाबा बताते 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, फिर 42 जन्म, फिर ये संगम का 1 जन्म, ऐसे और तो कोई बता ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं न कोई और जानते हैं 84 जन्मों का हिसाब, और न कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही जानते हो, बाप तो इस चक्र में आते ही नहीं है। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, फिर पतित बन करके क्या करते हैं, फिर चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ, हम पतित बन गए हैं, पावन बनाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं कि बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं, अनेकों को नहीं पुकारते हैं, पतित पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ, एक को ही पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर के लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ, उस एक को ही कहते हैं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई आते हैं पतित, पावन जो थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से उत्पत्तित होना शुरू होता है। वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग, आत्मा खुद को भूलकर देह अभिमान में आ गई, ये उल्टा मार्ग अपना लिया, तो ये वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, किस लिए ज्ञान सुनाया जाता है, क्या होता है इस ज्ञान से, जिससे आधा कल्प यानी 21 जन्मों के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। कैसे पाते 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा, इस ज्ञान से। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम देवी देवता, तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए। इसको आसुरी राज्य को और क्या नाम देंगे, हेल, नर्क, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। हाँ, चल रही है ना कहानी, तो हेल में आकर पड़े हो। वो था सुख धाम, ये है दुख धाम। दुख धाम में 100% इनसॉल्वेंट, 100% कंगाल, 100% इनसॉल्वेंट। हाँ, वो धन की बात कम, लेकिन जो चरित्र रूपी धन वो तो सब नष्ट हो गया, 100% इनसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। ये है सारा, ये चक्र किसका है, बाबा कहते हैं ये सारा चक्र भारतवासियों का है, क्योंकि पूरा पूरे चक्र में तो भारतवासी आते हैं। ये तो बाबा कहते हैं ये है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो सतयुग में होते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, अभी फिर, अभी कौन से वंशी हैं हम, अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो। किस लिए बने हो ब्राह्मण वंशी, देवता वंशी बनने के लिए, क्योंकि जब तक ब्राह्मण वंशी नहीं बने हैं तब तक देवता वंशी नहीं बन सकते। इसलिए तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, किस लिए, देवता वंशी बनने के लिए। ये है भारत के वर्ण, ये जो वर्ण है सारे, देवता, क्षत्रिय, वे, शूद्र, फिर ब्राह्मण, ये भारत के वर्ण है। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा पा रहे हो, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं, बाबा कहते 5000 वर्ष पहले माफिक, कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई नया रूप नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। 5000 वर्ष पहले माफिक, कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर क्या होता है, फिर दुख धाम से कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, हाँ कहाँ जाते हो, बोलो, हाँ शांति धाम जाते हो, सीधा ही नहीं सुख धाम में जाते हो, तो दुख धाम से तुम शांति धाम में जाते हो। तो अभी शांति धाम जाना है, जिसको ही निराकारी दुनिया कहा जाता है। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है, बिंदी है, कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है, सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, आत्मा को स्टार भी नहीं कहा जाएगा, बिंदी है ना केवल, स्टार भी नहीं। स्टार में तो देखो वो भी ऐसे कई कोण होते हैं, आत्मा में ऐसे थोड़ी है, वो तो केवल एक चमकता हुआ, एक चमकती हुई बिंदी है। और फिर दूसरा, क्यों बाबा कहते हैं स्टार नहीं, क्योंकि स्टार तो बहुत बड़ा होता है, हमें भले आकाश में ये सितारे छोटे छोटे दिखाई देते लेकिन है तो बहुत बड़े और बहुत दूर दूर है, परंतु दूर होने के कारण या आकाश में दिखाई देते हैं तो छोटे छोटे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, पर वो बहुत बड़े होते हैं, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है कि आत्मा स्टार मिसल है, सितारे माफिक है, ये मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप भी, बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, केवल हमारी नहीं, बाबा की आत्मा भी बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। हाँ, कई कहते हैं भगवान में कैसे ज्ञान आया, उनको किसने पढ़ाया, भगवान का टीचर कौन है, भगवान का बाप कौन है, उनको किसने जन्म दिया। तो भगवान का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है, तो वो तो स्वयं भू है। फिर किसने पढ़ाया, उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बीज है, बीज को कौन पढ़ाएगा, वो तो स्वयं सबका बाप है, सबका टीचर है, उसमें से ही सब निकलता है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है, शरीर थोड़ी ग्रहण करता नॉलेज, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। सो भी कैसा पाठ, बाबा कहते हैं सो भी अविनाशी, कभी न घिसने वाला, न घिसने वाला, न मिटने वाला, न नष्ट होने वाला। सो भी अविनाशी, 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो ही नहीं सकती है, एंड हो ही नहीं सकती, अंत कभी नहीं हो सकता है। देखो बाबा कैसे अपनी रचना का पूरा भेद बताते हैं, इनकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, फिर देवता से क्या बन गए, देवता का ऑपोजिट क्या है, दैत्य बन गए। अभी कलयुग में क्या है, सब दैत्य, सब जैसे असुरों में सर दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है, ये चक्र चलता रहता है। चक्र चलता ही आया है, बाकी तो सब है बाई प्लॉट्स, जो बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां बन गई उसको बाई प्लॉट्स कहते हैं, और धर्मों के बाई प्लॉट्स, वो छोटी छोटी उनकी कहानियां हो गई, बाकी तो सब है बाई प्लॉट्स, इस्लामी बोधी आदि कोई 84 जन्म तो लेते नहीं है। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, इसीलिए स्वास्तिका में भी क्या दिखाते हैं, राइट, राइट के तरफ है, फिर त्रेता में भी राइट ही है लेकिन नीचे, राइट में भी नीचे, फिर द्वापर में आए तो लेफ्ट, फिर लेफ्ट में ऊपर चढ़ती कला लेफ्ट में, तो बाबा कहते हैं राइट और फिर लेफ्ट, राइट फिर रॉन्ग। तो बाबा कहते हैं यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशियस बना, ये विशियस वर्ल्ड है, विकारी दुनिया है। 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी, पीस भी थी, और प्यूरिटी और पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी भी थी, धन भी बहुत था, संपत्ति बहुत थी। तो बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं, हाँ ये सब याद दिलाते हैं, ये सब था भारत में, पवित्रता, सुख, शांति, धन, संपत्ति, सब कुछ था। तो मुख्य है प्यूरिटी, सुख शांति संपत्ति कैसे आती है, पहला आधार है उसका पवित्रता। तो मुख्य है प्यूरिटी, इसीलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो पावन बन गए तो फिर सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी, सब मिल जाएगा। विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ, वही सदगति देने वाला है, इसीलिए सदगति देने वाला है, इसीलिए शिव बाबा क्या है, इसीलिए वही सतगुरु है, जो सदगति दे वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा बेगर टू प्रिंस माना नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है, भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता है, शरीर तो केवल एक माध्यम है, बाकी पढ़ती तो आत्मा है। शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, ये याद रखना है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको क्या कहा जाता है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है देही अभिमानी। कई पूछे देही अभिमानी किसको कहा जाता है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, इसको कहेंगे देही अभिमानी। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ये मैं करता हूँ, देह अभिमाना शरीर में आकर मैं कहते हैं ये करता हूँ। तुम अभी समझते हो मैं आत्मा करती हूँ, ये देह नहीं करता है, मैं आत्मा करती हूँ, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में एलॉय पड़ी, खाद पड़ी, खाद पड़ते पड़ते क्या हो गया, तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है इसलिए कहते हैं हम पतित बन गए हैं, फिर पावन बनना है, तो इसलिए आत्माएं उस पतित पावन को पुकारती है और कहती है हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं, क्या बाबा राय देते हैं कि हे पतित आत्मा, अब आत्मा पतित बन गई तो पतित पावन को पुकारती है हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। तो बाबा आकर राय देते हैं हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो, कैसे बनोगे पावन, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उसको ही क्या नाम देंगे, मुझ परमात्मा को याद करो तो जो खाद आत्मा में पड़ी है वो निकल जाएगी, उसको क्या कहेंगे, दूसरे शब्दों में प्राचीन योग। यही प्राचीन योग है जो भगवान ने सिखाया, गीता में भी यही योग है, मैं तुमको राज योग सिखाता हूँ, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो यही प्राचीन योग है, इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। तो मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि भी सब पतित ही है, कोई भी पावन नहीं है ना इस समय, अगर पावन होते तो ये पतित शरीर नहीं रहता ना, तो इसलिए कोई भी इस समय पावन नहीं है। साधु संत आदि भी सब पतित ही है, पावन बनने का उपाय तो बाप ही बताते, तो जब तक बाप न आए तब तक पावन बनाने का उपाय कैसे मिले, तो वही आके बताते कैसे उपाय क्या बताते, पहले अपना परिचय देते, फिर आत्मा का भी परिचय देते हैं, फिर कहते हैं मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं पावन बनने का उपाय तो बाप ही बताते हैं कि माम एकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते माम एकम याद करो। क्यों क्यों? हाँ, खाते पीते चलते फिरते माम एकम याद करो। क्यों? क्योंकि तुम सब आत्माओं का, आशिकों का माशूक मैं हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं माशूक हूँ तुम सब आशिकों का। तो आशिक का काम क्या है? चलते फिरते खाते पीते माशूक को याद करना, वही सच्चे आशिक माशूक है। तो तुम सब आत्माओं का यानी आशिकों का मैं माशूक हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर तुम पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक है, भक्तियां आशिक है उस भगवान माशूक के, सब भक्तियां आशिक है। माशूक कहते हैं, अब क्या कहता है माशूक? माशूक कहते हैं कर्म भी भल करो, कोई कर्म को छोड़ करके केवल मेरे मुझे याद करो ये नहीं कहते हैं माशूक। कर्म भी सब करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, ये मेहनत है। तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए, अगर पाना है वर्षा तो याद करना चाहिए ना। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जास्ती वर्षा चाहिए तो जास्ती याद करो, नहीं चाहिए वर्षा तो मत याद करो। हाँ, कम वर्षा चाहिए तो कम याद करो, आपके ऊपर। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा, ये है याद की यात्रा। जो जास्ती करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। कौन बनेंगे? शिव बाबा के गले का हार जो जास्ती याद करेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है ना, परम धाम में सिजरा है। तो शिव बाबा बीज पे थुर है, वो थुर है सिजरे के माफिक, शिव बाबा बीज है। तो ये कैसे बाबा के गले में सब परोए हुए देवी देवताएं, तो वो रुद्र माला हो गई। तो बाबा कहते हैं सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, उनको उस सिजरे को क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरियल ट्री, निराकारी झाड़, वो है इनकॉर्पोरियल ट्री, इन निराकारी झाड़ कहा जाता है। और ये है इस सृष्टि पर है कॉर्पोरियल ट्री यानी साकारी झाड़। निराकारी दुनिया से सबको नंबर वार आना है और आते ही रहना है, अंत तक आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं, सभी इसी ड्रामा के एक्टर्स हैं। चाहे अंत में आत्मा आएगी पाठ बजाने, आया आई और विनाश हुआ और फिर ऊपर चली गई, वो भी तो एक्टर तो बनी ना, आना तो है ही। सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। अब ड्रामा कब बना ये ड्रामा, बाबा कहते ये कह नहीं सकते का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं, कह नहीं सकते माना कब बना ये प्रश्न नहीं उठ सकता है क्योंकि अनादि है। तो ये कह नहीं सकते, ये तो चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे सुख धाम में। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन कर रहे हैं, राजधानी स्थापन कर रहे हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सत्युग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, हाँ थोड़े मनुष्य होंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ कितना होता है, हाँ बड़ा झाड़ नहीं होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ बहुत छोटा होता है, बाकी तो सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। अब इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ स्थापन हो, धर्म स्थापन हो रहा है, इसको बाबा क्या नाम देते हैं, अर्थात स्वर्ग के गेट खोल रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होना माना स्वर्ग के गेट खुलना, स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी, याद आता है 5000 वर्ष पहले कैसे इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे, इस लड़ाई को कहा ही जाता है, जिस लड़ाई से अनेक धर्म विनाश हो जाए और एक धर्म की स्थापना हो उस लड़ाई को क्या नाम देंगे, कल्याणकारी लड़ाई। ये कौन सी लड़ाई है, महाभारत लड़ाई तो है लेकिन महाभारत लड़ाई कल्याणकारी लड़ाई है। अब तो नरक के गेट खुले हुए हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप ही खोलते हैं, नरक का द्वार कौन खोलता है, रावण, तो स्वर्ग का द्वार बाप ही खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये बातें दुनिया नहीं जानती, तो तुम बच्चों को समझाता हूँ। भगवान ही ये समझा रहे और हम इतने भाग्यशाली बच्चे जो हमको ही समझाते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त। अब किसको तुम समझाएंगे, वो कहेंगे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, हाँ क्योंकि तुम तो गुप्त हो ना, भगवान हमें समझा रहे, ये दुनिया थोड़ी जानती है। तो बाबा कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो, चढ़ाओ नशा, हम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो, इसको कहा जाता है, हाँ ये संगम युग क्या है, ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, ऑस्पिशियस माना ही कल्याणकारी युग। जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं, श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को ही कहा जाता है, उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, याद भी करना है, पावन भी बनना है, भी होली भी योगी, विकारों को भी जरूर छोड़ना पड़े, क्या क्या करना है, बाप को याद भी करना है, पावन भी बनना है और विकारों को भी जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुख धाम था, अब विशेष है दुख धाम है, और दुख धाम होने के कारण क्या हो गया है, वर्थ नॉट अ पेनी, कौड़ी तुल्य बन गया है। अब ये ड्रामा का खेल है, खेल समझो तो क्या क्यों प्रश्न उठेंगे ही नहीं, ये ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। खुद भी बुद्धि में धारण करना है इस खेल को और उनको भी कराना है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कैसे बनेंगे बाप के गले का हार? याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे विकर्मा जीत बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे विकर्मा जीत बनना है। दूसरा, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को, बुद्धि भी तो एक नेत्र है ना, तो अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल, क्लियर भी हो और केयरफुल भी रहो वो रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। तो बाबा मिसाल देते, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, बताते ना आगे क्या होगा, ज्योतिषी बताते हैं। तो ग्रहों की नॉलेज से, अपनी ज्योतिषी की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस क्या जान लेते हो? वो ज्योतिषी तो ग्रहों के आधार से और ज्योतिष विद्या के आधार से आगे का जान लेते हैं, तो ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ, क्या होने वाला है और कैसे माया के पेपर आने हैं। तो आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है, पहले से ही पता चल जाएगा कि आज कुछ होने वाला है। याद कैसे ये मालूम पड़ेगा? याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन, पवित्रता ही नवीनता है। आज तक ऐसे किसी ने नहीं बताया घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, तो ये पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता हमारे ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। यह अभिव्यक्ति इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। क्या चाहिए? चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे। मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति और चलन में मधुरता, ये दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर्स बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको तो कल बताया ही था कि हमारे अमर सिंह भाई, जिन्होंने कल सुबह शरीर छोड़ा, आज उनके पार्थिव देह को पांडव भवन में लाया जाएगा 9:30 सुबह, और चार धाम की यात्रा करा के फिर यहाँ ही अंतिम संस्कार होंगे। शांति। जो नीचे से पार्टियों में आए हैं हाथ उठाएं, शांतिवन से जो आए हैं हाथ उठाएं। इतने सारे आए, आप सबके नाश्ता और भोजन की व्यवस्था बड़े डाइनिंग हॉल में है, वहीं आप सभी जाएंगे।
ओम शांति। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी अभी शिलू बहन ने बताया है कि बाबा के विशेष लाडले और मधुबन निवासी, कल भी बताया था अभी बता रहे हैं, मधुबन निवासी अमर सिंह भाई, जो कि बहुत ही निर्माणचित अथक सेवाधारी प्यार से सेवा करते रहते थे, कल भी बताया गया था। कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल वह अपना भौतिक शरीर त्याग करके बाबा की गोदी में गए। आज प्रातः 9:30 उनके भौतिक शरीर को पांडव भवन में चारों धाम की यात्रा कराने के लिए लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम विदाई के लिए ले जाएंगे, और शाम को 7:00 उनके निमित्त हिस्ट्री हॉल में भोग रहेगा। और बाकी सभी भाई बहनों को हम बता देते हैं कि जब भी किसी के बॉडी को लाते हैं, उस समय अगर कोई भी पुष्प अर्पित करते हैं, नियम अनुसार सबको अपना स्नान पानी करना, वस्त्र चेंज करना होता है, वह नियम तो आप जानते हैं, नहीं तो आप मेडिटेशन हॉल की सीढ़ियों पर खड़े होकर के देख सकते हैं। जब तक वो ये फूल चढ़ाते और स्नान पानी नहीं करते हैं तो किचन साइड भी उन्हें नहीं जाना होता है। नियम तो मालूम है लेकिन फिर से बता रहे हैं। और अभी हम सभी प्यारे बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनेंगे, उसके बाद 4 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की होगी उस साइड में जहाँ ये माइक स्टैंड है, और दूसरी लाइन टीचर्स बहनों की यहाँ पर होगी इस कैमरा के पास, और 2 लाइनें बहनों की होंगी। और फिर से बता रहे हैं कि जो भी शांतिवन से भाई बहने आए हैं, जो आज अमृत वेले आए वो हाथ खड़ा करें। ये देखिए, अमृत वेले ये लोग 4:00 निकलते हैं और 5:00 पहुंचते हैं। फिर इधर उधर बाबा कहते नियम है कि अपने स्थान पर योग करके बाद में आओ, 4:00 वहां से निकलना। और कभी कभी फिर आकर के यहाँ थकावट भी हो जाती है, मुरली सुनते टाइम थक जाते और दिन भर थक जाते। बाबा हमेशा कहते अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करो कि कभी भी थकावट भी ना हो, बाबा की याद भी रहे, क्योंकि उमंग बहुत रहता है और अमृत वेले से ही चाहे तो कभी गाड़ी में योग करते हैं, चाहे गाड़ी में सुस्ती करते हुए आते हैं। इसलिए जो अमृत वेले का सिस्टम है, अपना योग करके आराम से आए, और फिर जो भी रुकने वाले वो हाथ खड़ा करें, जो रुके हुए यहाँ पर वो हाथ खड़ा करें, जो रुके हुए यहाँ पांडवों वो हाथ खड़ा करें, करो ना हाथ। अच्छा, और जो आज अमृत वेले आए हैं और जो चले जाएंगे नाश्ता या खाना खा के वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि ये सब शांतिवन में प्रोग्राम चल रहे हैं ना, वहां पर ठहरे हैं। लेकिन होता है कि बाबा के घर जाए आराम से नाश्ते के बाद आओ तो ज्यादा अच्छा होता है, कंफर्टेबल भी रहते हैं। अमृत वेले आते हैं फिर कभी थक जाते हैं, कभी होता है कहाँ लेटे कहाँ बैठे, इसलिए बाबा कहते हैं इस समय अपने मन को भी संभालना है और तन को भी संभालना है। ये तन बहुत वैल्यूएबल है, अगर तन की संभाल नहीं करेंगे तो बाबा से वरदान कैसे लेंगे, इस बात का सबको ध्यान रखना। उम्र का असर, शरीर का असर, और आजकल कई प्रकार के शरीर को भी मुश्किलें होती रहती हैं। शरीर को कष्ट नहीं दो, बाबा बार बार ये समझाते हैं, इसलिए सबको ध्यान रखना है कि सुबह नाश्ते के बाद आओ पांडवन, पांडवन आपका है, आप आराम से बैठो, आराम से चारों धाम की यात्रा करो, आराम से बाबा के घर में भोजन भी स्वीकार करो, लेकिन सिस्टम को समझो आप सभी। अच्छा, अभी हम सभी सिस्टम को समझते हुए बाबा से मीठी मीठी रूह रुहान करते हुए बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। जैसा आपको बताया चार लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की, एक लाइन यहाँ पर टीचर्स बहनों की और डबल विदेशी भाई बहनों की होगी, और दो लाइनें अन्य बहनों की होगी। ओम शांति। और सभी को 9:30 बजे से पहले नाश्ता कर लेना है, क्योंकि 9:30 बजे अमर सिंह भाई के भौतिक शरीर को लाया जाएगा, उससे पहले ही नाश्ता स्वीकार कर लेना है। ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति
के उस पार।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, आज वतन का नजारा बहुत ही सुंदर और अनेक प्रकार से चारों ही तरफ चमचमाती हुई लाइट की किरणों से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। एक साइड में बाबा खड़े थे, बाबा के सामने तीन प्रकार के बहुत सुंदर बॉक्सेस और हर बॉक्स इतना सुंदर था। बॉक्स के अंदर क्या है उसको देखने से पहले बॉक्स की जो सजावट थी इतनी प्यारी थी, तो जैसे मन करता कि उसको उठा ले या हाथ में ले ले। और बाबा भी बहुत प्यार से तीनों बॉक्सेस को देख रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्ची देख रही हो ना, मैंने कहा बाबा इतना सुंदर है, हर एक बच्चे को देंगे तो कितना खुश होगा। बाबा ने कहा बाप तो दे ही रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बॉक्स क्यों आज रखे हैं। बाबा ने कहा कि बाबा का हर बच्चा इतना विशेष है, हर बच्चे के अंदर बहुत विशेषताएं और बाप का प्यारा विश्व के सामने पूछनीय है। जो चीज जितनी अमूल्य होती है उसका बाहरी स्वरूप भी उससे ज्यादा अमूल्य होता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे विशेष लाडले और रतन हैं। तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची बॉक्स को देखो। तो जैसे बॉक्स को देखती हूँ खुलता है तो हर एक बॉक्स के अंदर इतने सुंदर डायमंड चमकते हुए और उसकी चारों तरफ लाइट निकलते हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा हर एक बच्चा बाप का विशेष रतन है और हर एक के अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, इसलिए बाबा भी बच्चों को अपने दिल तक की डिबिया में बिठाते हैं। और फिर बाबा ने कहा जितने विशेष उतना उनका बाहरी स्वरूप भी बहुत सुंदर है। कभी तो देवताई स्वरूप है, कभी ब्राह्मणों का रूहानी स्वरूप है, कभी फरिश्ता स्वरूप है। तो ये तीनों ही स्वरूप जो है वो बाहरी रूप से उन्हों को भी अनुभव कराते हैं। जैसे यज्ञ की स्थापना में दादियों के द्वारा और यज्ञ के आधार व्रत के द्वारा देखते ही देखने वाले को कई अनुभव और बाबा को देखते हुए सब पुरानी बातों को भूल जाते और कुछ न कुछ प्राप्ति करके जाते थे। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बाबा अपने हर बच्चे को प्रोटेक्शन और हर बच्चे को अपने छत्र छाया में और हर बच्चे का श्रृंगार करके विश्व के सामने लाइट की किरणें फैलाने के लिए ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और रॉयल्टी के द्वारा सब विश्व के अंदर
ऐसे किरणें फैलाने के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं और बच्चे वैसे बन रहे हैं। कुछ सेकंड में क्या देखते हैं, जो पहले नंबर का बॉक्स था उसकी लाइट की किरणें चारों तरफ ज्यादा फैल रही थी, फिर जो दूसरे नंबर का बॉक्स था उसकी जो रोशनी लाइट की किरणें थी वो कभी जगमगाती थी, कभी बुझती थी, कभी थोड़ा आगे बढ़ती, कभी थोड़ा कम होती थी। तो जैसे दूसरे नंबर को देखा तो बाबा ने कहा कि अभी भी बाबा के ऐसे विशेष रतन उनका क्या स्थिति हो जाती है, कभी कभी बाहर के संग बाहर के वातावरण में प्रभावित होने के कारण बाबा ने उनकी विशेषताओं के द्वारा शक्ति संपन्न बनाया है, उसके कारण कभी कभी ऊपर नीचे होता है। तो जो तीसरा बॉक्स था वो ऑटोमेटिकली खुलता तो लाइट की किरणें बिल्कुल डिम होती जा रही थी। बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चे हैं वो ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, चाहे पुरुषार्थ के लिए, चाहे परिस्थितियों के लिए, चाहे कई बातों के लिए उनको हिम्मत नहीं रहती है। तो बाबा ने उनको शक्ति दी है, उस शक्ति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, और बाबा जो उनको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हैं उसका अनुभव कभी होता है कभी नहीं होता है। तो मैंने कहा पहला जो बॉक्स था, बाबा ने कहा ऐसे भी लाडले बच्चे हैं, हर कदम पर बाबा को अपना साथी और बाबा की ही छत्र छाया में है ऐसा अनुभव करते चल रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा फिर इन सबको क्या करना चाहिए, बाबा ने कहा बच्चों को एक लक्ष्य रखना है। जैसे बाबा हर बच्चे के गुण गाते हैं, विशेष रतन को अपने दिल में समाये रखते हैं, इसलिए सदा इस खुशी में रहें कि बाबा ने हमको चुना है, बाबा हमारा साथी है और बाबा ही हमारे छत्र छाया है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि अभी समय अनुसार बच्चों को अपना शक्ति स्वरूप और शीतला स्वरूप को धारण करना है। समय बच्चों के सामने बहुत कुछ अनुभव करा रहा है, उस समय शक्ति स्वरूप पे रहे, बाप के सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं वह समझते रहे और परिस्थितियों को देखते हुए अपनी आंतरिक स्थिति को शीतल एक रस बनाए और विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें और अपने रॉयल संस्कारों की वाइब्रेशन से और योग की स्थिति के द्वारा उनको ऐसे योग की किरणें दें ताकि देखने वाले को भी ये अनुभव हो और उन्हें ये अनुभव हो कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहा है और हमें भी उनसे अपना वर्षा लेना है। फिर तो बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया और सबके हाथ में वही एक सुंदर सा बॉक्स दिया, उस बॉक्स के अंदर एक बहुत चमकता हुआ डायमंड की तरह एक रतन था और उसमें चारों ही तरफ लाइट की सुंदर किरणें और वाइब्रेशन निकल रही थी। तो बाबा ने कहा सदा बच्चों को ध्यान रखना है कि हम बाबा के विशेष रतन और बाबा की छत्र छाया में हैं और अपनी आंतरिक स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी प्रकार के तूफान आए लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति की जो वाइब्रेशन शक्तियां हैं वो सदा जगमगाती और दूसरों को अनुभव कराती रहे। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, हर एक के हाथ में वो सुंदर चमकता हुआ बॉक्स था और उसकी रतन की किरणों से बच्चों का भी श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा मेरे बच्चे सदा ही गुणों से श्रृंगारे हुए, शक्तियों से भरपूर हैं, इस स्वरूप में रहना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। उसके बाद जिनके भोग थे उनके निमित्त भी बाबा को याद दिया। बाबा ने भी रिटर्न में सबको दृष्टि देते हुए सबको याद दिया। ओम्शन चार लाइन में अमृत होगा, एक लाइन